ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का ये संबोधन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने कहा है कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का पक्ष लिया, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उसको करारा जवाब देना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एयर मार्शल भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को किस तरह कम से कम नुकसान पहुंचाया है।
We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था।
DGAO ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में बताया। इसमें सेना, नौसेना और वायु सेना की रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मजबूत वायु रक्षा प्रणाली में कई तरह के बहुस्तरीय AD सेंसर और हथियार प्रणाली शामिल हैं। एयर मार्शल भारती ने बताया कि पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों को स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्ट और हार्ड किल काउंटर UAS सिस्टम और वायु रक्षा कर्मियों द्वारा विफल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की युद्ध प्रणालियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उन्होंने आकाश प्रणाली जैसी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के शानदार प्रदर्शन के बारे में भी बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा अत्याधुनिक उपकरण और हथियार प्रणाली प्राप्त करने में बजटीय और नीतिगत समर्थन के कारण शक्तिशाली रक्षा प्रणाली को रखना और संचालित करना संभव हो पाया है।
हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, हाउ हैव इंडियन फोर्सेज मैनेज्ड टू मिनिमाइज द डैमेज टू बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रा इन द कंट्री इन स्पाइट ऑफ द अनरिलेंटिंग एफर्ट्स बाय द पाकिस्तानी फोर्सेज। मोस्ट ऑफ यू एंड द मेजोरिटी पॉपुलेस within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force.
सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान की वायुसेना ने 9 और 10 मई की रात को भारतीय एयरफील्ड और लॉजिस्टिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो उन्हें मल्टीलेयर काउंटर ड्रोन और एयर डिफेंस ग्रिड द्वारा रोका गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की हवाई रक्षा को भेदने का कोई मौका नहीं था।
अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड UAVs से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुछ ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया।
नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा कि नौसेना एक समग्र नेटवर्क बल के रूप में काम करती है जो सभी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। DGNO ने कहा कि समुद्री बल, हवाई क्षेत्र सहित व्यापक समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए निरंतर निगरानी और पहचान सुनिश्चित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कई सेंसर और इनपुट का उपयोग करते हुए नौसेना खतरों को बेअसर करने के लिए निरंतर निगरानी बनाए हुए है।
कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को केरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operation.
वाइस एडमिरल प्रमोद ने कहा कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी हवाई अमलों को मकरान तट के पास नियंत्रित रहने के लिए मजबूर किया, जिससे समुद्री क्षेत्र का खतरा टल गया। इस बीच भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशों की वार्ता संपन्न हो गई है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल रत्ती ने विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ फोन पर चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री अब्देल रत्ती को हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया। उन्होंने किसी भी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के महत्व पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के विरूद्व लड़ाई में पूरे विश्व को एक निर्णायक संदेश दिया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करने और आतंकवाद से मुकाबले में आम सहमति बनाने के लिए 20 देशों के नेताओं के साथ सीधे संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि इनमें कई इस्लामिक देशों सहित सभी देशों ने भारत के रवैये के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की, हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और सबसे बड़ी बात है तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि वो किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं, क्योंकि वो विस्फोटक हो सकती है। NDMA ने कहा कि अगर लोगों को कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद नागर विमान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने की 15 तारीख तक नागर विमान परिचालन के लिए बंद रखा गया था। केंद्र सरकार ने अपनी ताजा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सेना के दावे का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुछ भारतीय समाचार चैनलों द्वारा भारतीय हवाई ठिकानों के नष्ट होने की बात स्वीकार करने का झूठा आरोप लगाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि पाकिस्तान साक्ष्य के तौर पर छेड़छाड़ वाली फुटेज दिखाकर अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। इस कठिन समय में हर सूचना की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। अगर आपको संदिग्ध सामग्री, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना दिखाई दे तो आप PIB फैक्ट चेक इकाई को सूचित करें। आप ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रूपये और प्रत्येक घायल को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास कल रात इस दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनमें 9 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। करीब 13 लोग घायल हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विराट कोहली ने 14 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट जीवन से संन्यास लेने की खबर सोशल मीडिया पर साझा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लगातार जारी है। महाराष्ट्र ने अब तक 33 स्वर्ण, 26 रजत और 25 कांस्य पदक सहित 84 पदकों के साथ पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान बनाए रखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 2,975 अंक बढ़कर 82,430 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 917 अंक बढ़कर 24,925 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।